न्यायकर्ता गिदओन और अबीमेलेक। अध्याय 6। मिद्यानियों का इज़राइलियों पर अत्याचार। इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों के हाथ दे दिया। मिद्यानी इज़राइलियों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। इज़राइलियों ने मिद्यानियों के डर से पर्वतों में अपने लिए दरारें, गुफाएं और गढ़ तैयार किए। जब जब इज़राइली बीज बोते, तब तब मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग आकर उन पर आक्रमण करते। वे देश में अपने खेमे डाल देते और गाजा के निकट तक की उपज नष्ट कर देते। वे इज़राइलियों के लिए न अन्न छोड़ते, न भेड़ें, न बैल और न गधे। वे अपने ढोरों और खेमों सहित आया करते। संख्या में वे टिड्डियों की तरह उतरते, वे और उनके ऊंट असंख्य थे। इस प्रकार जब वे देश में आ जाते तो उसे उजाड़ डालते थे। मिद्यानियों द्वारा इज़राइलियों की इतनी दुर्गति की गई कि वे सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। नबी द्वारा इज़राइलियों पर दोषारोपण। इज़राइलियों ने मिद्यानियों के भय से प्रभु की सहायता के लिए उसकी दुहाई की, और प्रभु ने इज़राइलियों के लिए एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, प्रभु इज़राइलियों के ईश्वर का कहना है, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और मैंने ही दासता के गृह के बंधनों से तुम्हारा उद्धार किया। मैंने ही मिस्रियों के हाथों से और तुम्हारे सब अत्याचारियों के हाथों से तुम्हें मुक्ति दिलाई। मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से भगाकर तुम्हें उनका देश दिया। मैंने तुमसे कहा, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम जिन अमोरियों के देश में निवास करते हो, तुम्हें उनके देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। गिदोन को प्रभु के दूत के दर्शन। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। ये वृक्ष अबीएजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दांव रहा था कि वो उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो ये सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहां गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज ये कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया? अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूं। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मिद्यानियों को पराजित करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहां से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहां रहूंगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और आधा मन मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उंडेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिदौन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदौन समझ गया कि वो प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदौन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। वो अबीएजेर के वंशजों के ओफ्रा में आज तक विद्यमान है। बाल देव की वेदी का ध्वंस। उसी रात प्रभु ने उसे आदेश दिया, अपने पिता का बछड़ा और 7 साल का एक सांड ले लो, अपने पिता की बाल देव की वेदी गिरा दो तथा उसके पास का अशेरा देवी का खूंट काट डालो। तब इस गढ़ वाले ऊंचे स्थान पर पत्थरों को ठीक तौर से जोड़कर प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाओ। फिर उस दूसरे सांड को लाकर काटी हुई अशेरा की लकड़ी पर उसकी होम बलि चढ़ाओ। तब गिदौन ने अपने नौकरों में से 10 को लेकर प्रभु द्वारा दिए हुए आदेश का पालन किया। अपने कुटुंब और नगर के लोगों के डर से उसने दिन में ऐसा नहीं किया, उसने ये काम रात में किया। दूसरे दिन सवेरे जब नगर के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि बाल देव की वेदी गिरा दी गई है, उसके पास का अशेरा देवी का खूंट काट दिया गया है और नई बनाई हुई वेदी पर दूसरे सांड की बलि की गई है। वे एक दूसरे से कहने लगे, किसने ये काम किया? पूछताछ करने पर उन्हें मालूम हुआ कि योआश के पुत्र गिदौन ने यह किया था। नगर के लोगों ने योआश से कहा, अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो, बाल देव की वेदी ढहाने और उसके पास का अशेरा देवी का खूंट काटने के कारण उसका वध किया जाएगा। परंतु योआश ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा, क्या तुम बाल देव का पक्ष लेने आए? क्या तुम बाल देव की रक्षा करने आए? जो उसका पक्ष लेता है वो सुबह होने तक मार डाला जाएगा। यदि बाल सचमुच देवता है तो वो अपने पक्ष में बोले, क्योंकि गिदौन ने उसकी वेदी गिरा दी है। इसलिए उस दिन से गिदौन का नाम यरूबबाल पड़ गया। इसका अर्थ है, बाल ही उसके विरुद्ध लड़े, क्योंकि उसने उसकी वेदी तोड़ डाली थी। गिदौन द्वारा सैन्य संगठन। सब मिदियानी, अमालेकी और पूर्व के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने यर्दन पार कर यिज्रेल के मैदान में पड़ाव डाला। प्रभु की प्रेरणा से गिदौन ने नरसिंगा बजाया और अबीएजेर वंशियों को अपना साथ देने के लिए बुलाया। उसने सारे मनस्से प्रांत में दूत भेजकर उन्हें भी अपना साथ देने के लिए कहला भेजा। फिर उसने आशेर, जबूलोन और नफ्ताली के लोगों को बुलवाया, वे भी आकर उनसे मिले। गिदौन ने ईश्वर से ये प्रार्थना की, क्या तू सचमुच अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इसराइलियों का उद्धार कराएगा? देख, मैं ये ऊनी खाल खलिहान में रख देता हूं, यदि केवल इस खाल पर ओस पड़ेगी और आसपास की भूमि सूखी रहेगी, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इसराइलियों को मुक्ति दिलाएगा। ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल आकर उसने उस खाल को निचोड़कर उससे एक पात्र भर पानी निकाला। फिर गिदौन ने ईश्वर से ये प्रार्थना की, मुझ पर क्रोध न कर, मैं फिर एक बार तुझसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे फिर से एक बार इस खाल के द्वारा परख करने दे, इस बार केवल खाल सूखी रहे और आसपास की भूमि पर सर्वत्र ओस पड़े। उस रात ईश्वर ने ऐसा ही किया, केवल खाल सूखी रह गई किंतु भूमि पर सर्वत्र ओस पड़ गई थी।